नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
यथा दुःखम् अयत्नतः। तो जिस प्रकार से
दुख हमारे जीवन में बिन बुलाए आते हैं, उसी प्रकार से सुख भी चले आएंगे। जिन्होंने देह धारण किया है इस संसार में, उनको सुख और दुख दोनों ही बिना प्रयास किए हुए आएंगे। अयत्नतः का मतलब है बिना यत्न किए हुए, बिना प्रयास किए हुए। तो बिन बुलाए दुख आते हैं, बिन बुलाए सुख भी आएंगे, हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार। केवल इस जन्म में कर्म करने से ये कोई निश्चित नहीं है कि हमें बहुत सुख और दुख मिलेंगे। इस जीवन में जो सुख और दुख निर्धारित है, जो हमारे कपाल में लिखा है, वही मात्र आएगा। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख को निमंत्रण देता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधा गोकुलानंद के सामने आके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अनेक दिनों से मुझे बहुत सुख मिला है, न जाने क्यों एक भी दुख नहीं आ रहा है, कम से कम एक दुख तो जीवन में दे दो, ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करता है। हरेक व्यक्ति आता है कि हे भगवान, इतने दुख मेरे जीवन में है, कम से कम एक सुख तो दे दो, ये प्रार्थना करके आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि कोई निमंत्रण नहीं देता दुख को, लेकिन दुख फिर भी कम वक्त आ जाता है जीवन में, नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाता है। तो उसी प्रकार से स्वयं ही अपने आप हमारे जीवन में सुख भी आ जाएगा। तो फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जब हम दुख का सामना हम करते ही हैं, करना ही पड़ता है मजबूरन, और जब ये भी दिन बुलाए आता है, बिना प्रयास किए हुए दुख आता है, तो फिर सुख के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए? जब सुख भी अपने आप आएगा, तो क्यों हमारे मनुष्य जीवन का मूल्यवान समय हमें बर्बाद करना चाहिए केवल उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो वैसे भी अपने आप आने वाला है? तो ये बहुत सोचने की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि केवल व्यर्थ में हमारे समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्यों के लिए जो कि जिनका फल अपने आप ही हमें प्राप्त होने वाला है। और प्रभुपाद जी आगे भी बता रहे हैं कि भौतिक सुख और दुख हरेक योनि में प्राप्त होता है। हमारे किसी भी प्रकार का देह या शरीर हो, ये सुख दुख आएंगे। इसलिए हमें भगवान के साथ जो हमारा मूल संबंध है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन का हर एक क्षण इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। सारे संसार में लोग एक कार्य में लगे हुए हैं, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति को कैसे बढ़ाएं? अलग अलग लोग अलग अलग कार्यक्रम बना रखे हैं। कोई सोचता है कि मैं व्यवसाय आदि करके बहुत धन कमाऊंगा, इससे बहुत इंद्रिय तृप्ति मेरी हो जाएगी। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत भोग करूंगा, ऐसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तरह तरह के कर्म कांड यज्ञ आदि करूंगा और अगले जन्म में मैं चंद्र लोक, सूर्य लोक आदि ऐसे दिव्य लोगों की, देव लोगों की प्राप्ति करूंगा और वहां जाकर सोमरथ का पान करूंगा। तो तरह तरह के कार्यक्रम लोग बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति की वृद्धि के लिए। परंतु चाहे जितने भी वो कार्यक्रम हो, हमें जानना चाहिए कि केवल हमारी योजना से सुख और दुख नहीं आते हैं या जाते हैं। दुखों का निवारण करना और सुखों को बढ़ाना, ये सबका कार्यक्रम है, लेकिन ये केवल हमारी योजना से नहीं होगा। ये भगवान की योजना से हमारे जीवन में दिए जाते हैं, और इसलिए दिए जाते हैं कि हमने ऐसे ही कर्म पूर्व जन्मों में किए हुए हैं। तो जब हम शरीर को देखते हैं किसी का, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पूर्व कैसे कर्म हैं। केवल देखने से व्यक्ति को पता चल सकता है, थोड़ा अंदाज तो कम से कम आ सकता है कि ये पिछले जीवन में इसने क्या किया था। जब कोई बहुत पुण्य करता है पूर्व जन्मों में, तो उसे एक ऐसे कुल में जन्म मिलता है जो कि ऊंचा कुल माना जाता है, उसे अधिक ऐश्वर्य मिलता है, उसे सौंदर्य प्राप्त होता है, अच्छा शिक्षण मिल जाता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो प्राप्त हो जाते हैं पुण्यवान व्यक्ति को। और जब देखते हैं कि कोई बहुत ही गरीब है, तरह तरह के कष्टों में बेचारा अटका हुआ पड़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये पूर्व किए हुए पापों के फल वो व्यक्ति अभी भुगत रहा है। अभी साधारण व्यक्ति के जीवन में दोनों का मिश्रण है, थोड़ा सुख भी है थोड़ा दुख भी है। तो हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों में हमने कई पाप भी किए होंगे, कई पुण्य भी किए होंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो चाहे हम पृथ्वी लोक के निवासी हो, चाहे हम ब्रह्म लोक के निवासी हो, देव लोक के निवासी हो, चाहे हम पशु हो या कोई भी हो, ये कार्यक्रम सबका चल रहा है और सबके जीवन में ये दो चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, सुख और दुख। और ऊपर से नीचे तक सभी लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, नायम देह देह भाजाम विलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कार्य सस्तम शुद्धेयस्मात् ब्रह्म सौख्यम स्वान्तम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, ये जो देह है ये बहुत मूल्यवान है और इसका प्रयोग ऐसे चीजों के लिए नहीं करना चाहिए जो कि मल खाने वाले पशुओं को भी उपलब्ध है। न अयम देहम, अयम देह मतलब ये देह, कौन सा देह? मनुष्य देह। देह भाजाम ने लोके, जिनको ऐसे देह प्राप्त हुआ है, अनेक ऐसे प्राणी हैं, अनेक तरह के देह उनको प्राप्त हुए हैं, 84 लाख प्रकार के देह हैं। उनमें से अयम देह, ये जो मनुष्य देह है, ये बहुत विशेष है। इसलिए हमें ऐसे चीजों के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, कष्टान कामान, ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए। वे भुजाम ये, जो कि ऐसे पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। इसलिए ऋषभदेव महाराज आगे बताते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का है पुत्र, इसलिए दिव्य तपस्या करो, शुद्ध ये जिससे कि हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, जिससे कि अनंत आध्यात्मिक या ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। हमें केवल इस संसार के क्षण सुख से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा अधिकार है उस आनंद के लिए जो दिव्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति कृपण है, जो केवल इस संसार के क्षण बंधु सुख के लिए इतना परिश्रम करता है। इसी प्रकार से नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं श्रीमद् भागवत में, तस्मै वहि को प्रयतेत बोधो न लभ्यते यद्धर्मताम परिचयः, तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र प्रतिरमसा। वो कहते हैं कि हे व्यास देव, मनुष्य जो बुद्धिमान है, कोविद, कोविद मतलब विद मतलब ज्ञान या बुद्धि, कोविद मतलब जो बहुत बुद्धिमान है, तो इस जगत में रहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे चीज के लिए प्रयास करे जो कि ऊपर या नीचे घूमने से प्राप्त नहीं होगा। भ्रमता ऊपर या धरा, चाहे ब्रह्मलोक में जाए, पाताल लोक में जाए, नरक लोक में जाए, स्वर्ग लोक में जाए, कहीं भी जाए, ऐसे चीज के लिए उसे प्रयास करना चाहिए जो कि ऊपर नीचे घूमने से नहीं मिलेगा, परंतु यह अपने स्थान में बैठे मिल जाए। और स्थान में भक्तों के संग बैठ के कृष्ण भक्ति करके, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं दिल बुलाए वो आते हैं और जाते हैं, उसी बात को वो भी दोहरा रहे हैं। क्योंकि तल लभ्यते दुखवत अन्यतः सुखम, जिस प्रकार से दुख हमारे जीवन में प्राप्त हो रहे हैं आ रहे हैं, उसी प्रकार से सुख भी आ जाएगा। काले में सर्वत्र गमीर अंधकार, हर एक व्यक्ति को ये दुख और सुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुख और सुख को सहन करते हुए सुख को भी सहन करना पड़ता है। तो दुख और सुख को सहन करते हुए हमें उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो कि केवल मनुष्य देह में प्राप्य है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। केवल अगर हम उस चीज के लिए प्रयास करने का प्रयास की कोशिश करते हैं जो कि पशुओं को भी उपलब्ध है, तो ये मनुष्य जीवन का वो व्यर्थ गवाना है। वैसे श्रीमद् चैतन्य भागवत में सुंदर प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु का और श्रीधर खोला बेचारा। उस समय महाप्रभु निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे और भक्ति की लीला उन्होंने प्रकट नहीं की थी, वो एक व्याकरण के विद्वान की लीला कर रहे थे उस समय। और वो प्राय प्रति दिवस श्रीधर खोलावेचा के घर में जाते थे। श्रीधर खोलावेचा बहुत गरीब व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और उनका व्यवसाय था कि वो केले, केले के पत्ते, केले के फल आदि बेचते थे, और उसे थोड़ा मुझे तो कुछ कमा लेते थे, उससे 50% जो है गंगा देवी की उपासना के लिए खर्च करते थे, और बाकी जितना भी थोड़ा बहुत 50% बच जाता था उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। तो निमय पंडित रोज जाया करते थे, ये रे श्रीधर, ये तुम बहुत महंगा बेच रहे हो, इसको कम कीमत से बेचो। तो श्रीधर बोलता, नहीं नहीं, ये तो महंगा नहीं है, मैं ईमानदार व्यापारी हूँ, मैं ऐसे धोखेबाजी नहीं करता। ऐसे वाद विवाद करके निमर पंडित किसी न किसी तरह से उसके केले आदि छीन के ले लेते। एक बार निमर पंडित ने श्रीधर का मजाक उड़ाना चाहा, मजाक नहीं, उनके माध्यम से हम सबको सिखलाना चाहा वास्तव में, कहा कि श्रीधर तुम तो हरि का भजन करते हो, लेकिन देखो तो सही तुम्हारी क्या दरिद्रता है, कितनी गरीब है तुम्हारी, तो क्या फायदा तुम लक्ष्मी नाथ लक्ष्मीपति श्री नारायण श्री कृष्ण की उपासना करते हो, तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो श्रीधर कोलावेचा ने उत्तर दिया कि देखिए हे ब्राह्मण, यहाँ पर मेरे शरीर में कुछ तो वस्त्र है, हाँ ये अच्छे वस्त्र नहीं है, कम से कम मेरा शरीर तो थक रहा है, और मेरे घर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन तो नहीं है, लेकिन मैं भूखा तो नहीं हूँ, पेट तो भर रहा है। अरे लेकिन इधर देखो तो सही, तेरे घूम के देखो पड़ोस में, वो देखो सब लोग चंडी काली दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, और देखो कितना ऐश्वर्य उनके जीवन में है, उनके जीवन में कोई कमी है? लेकिन तुम्हारे जीवन में देखो कपड़े सब फटे हुए हैं, और घर में कहीं चावल को अनाज नहीं दिखाई पड़ता, देखो छत में कितने सब छेद पड़े हैं, सब बारिश अंदर आती है, तो क्या फायदा? तो श्रीधर ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण, मैं अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हूँ। देखिए एक राजा बड़े राजमहल में रहता है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट शुद्ध घी में बनाए हुए भोजन को खाता है, रेशम के कपड़े पहनता है, आभूषण आदि को भी ग्रहण करता है। दूसरी ओर एक पंछी है, पक्षी, जो कि वृक्ष के ऊपर निवास करता है, और वो भी थोड़े अनाज के थोड़े दाने खा लेता है, थोड़े फल इधर उधर चख लेता है अपनी चोंच से, और उससे वो अपना जीवन निर्वाह करता है। दोनों का जीवन एक समान है, जैसे जैसे भगवान ने उनको रखा है उस परिस्थिति में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? उसी प्रकार से मेरे जीवन में भगवान ने मुझे ऐसे रखा है तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ और काफी लंबा संवाद हुआ, बहुत सुंदर। परंतु कहने की बात यह है कि श्रीधर कोल्हे के विचार देखिए, वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने परिस्थिति से संतुष्ट रहे, अपने प्रारंभ से संघर्ष न करे, बिना वजह अपने प्रारंभ से संघर्ष कर करके केवल दुख ही बढ़ जाता है, सुख नहीं मिलता उससे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, सुखम इंद्रियकम, ये अलग अलग योनियों में प्राप्त होता है, चाहे ब्रह्मा जी के शरीर में हो, चाहे वो मनुष्य देह में हो या और किसी भी प्राणी के देह में हो। सभी लोगों के जीवन में ये इंद्र सुख उपलब्ध है, केवल अंतर है मात्रा का और गुण का बस। नहीं तो हर एक प्राणी को जिसने यह भौतिक जगत में जन्म लिया है उसे ये दुख और सुख का अनुभव करना पड़ता है। अब देखिए, एक राजा अपने राजमहल में बैठ के भोजन ले रहा है और एक कुत्ता सड़क पे उसका भोजन खा रहा है, दोनों में क्या अंतर है? क्या राजा को ज्यादा आनंद आ रहा है? हो सकता है राजा को डायबिटीज है, ये है वो है, राजा ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। कुत्ते को डायबिटीज होता है कभी? कुत्ता बड़े आनंद से जो आप देंगे वो खा लेगा, तो किसको ज्यादा आनंद आ रहा है? उधर कुत्ता कहीं सड़क पर सो जाता है, नींद का आनंद कुत्ता ले रहा है, उसको कोई गोली की आवश्यकता नहीं होती है, उसको इतना मानसिक तनाव नहीं होता कि मेरे पैसे का क्या होगा, राज का क्या होगा, वो सोया आराम से सोया सोया पड़ता है। तो नींद का आनंद किसको ज्यादा आता है? कुत्ते को आता है कि राजा को आता है? जो भी सुख आप दे रहे जीवन में वो पशु भी उसका भोग करते हैं और मनुष्य भी। तो प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य समझाते हैं, तो मनुष्य देह ये इतना मूल्यवान देह हमें मिला है, तो ये देह प्राप्त करके हमें पशुओं की नकल क्यों करनी चाहिए? जिसके पीछे वो भाग रहे हैं हमें क्यों भागना चाहिए उसके पीछे? हमें तपोदिव्य पुत्र का ये तत्व शुद्ध ये ब्रह्म सौक्षम को नमसम इसके पीछे भागना चाहिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति है कोई रहा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि संसार से ज्यादा प्रभावित न होकर हमें केवल भक्तों के संग जो हम सुनते हैं, शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं, उसके पीछे हमें जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देने के बाद बात आगे बढ़ा रहे हैं प्रहलाद महाराज, और वो कहते हैं तत्प्रयासन कर्तव्यम यत आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। तत्प्रयासन, तत् मतलब उस चीज के लिए, किस चीज के लिए? अभी जिसका वर्णन किए हैं प्रहलाद महाराज, किसका वर्णन किए हैं? इंद्रिय सुखम, कि उस चीज के लिए प्रयास न कर्तव्य। तो हे मेरे मित्रों, उस निम्न श्रेणी के सुख के लिए प्रयास का कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि यत आयु व्यय परम, क्योंकि ऐसे प्रयास से, किस प्रकार के प्रयास से? इंद्रिय सुख के पीछे भागने के प्रयास से क्या होता है? आयु व्यय, आयु समाप्त हो जाता है, आयु कक्षी क्षय हो जाता है। केवल जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके आयु का व्यय नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े होंगे, भक्तों के भी बाल सफेद हो जाएंगे, भक्तों को भी तरह तरह की बीमारियां आएंगी, परंतु जब ये देह का अंत होगा तो भक्त कहां जाएंगे? वो भगवान के धाम में जाएंगे, और जो भक्त नहीं है वो कहां जाएंगे? वो पुनः यहां लौट के आएंगे। इसके लिए श्रीमद् भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, आयुर हरति वै पुंसा उद्यतस्तम चयन असो तस्यक्षणी तम श्लोक वार्तया, कि जो लोग उत्तम श्लोक की वार्ता करते हैं, उत्तम श्लोक मतलब श्री कृष्ण, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, तो वो भगवान की वार्ता या संवाद या कथा अगर हम सुनेंगे, बोलेंगे, इसका स्मरण करेंगे, तो फिर हमारे लिए हर एक जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते हैं, भगवान का नामोच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त क्या होता है, मृत्यु के एक दिन और करीब उनको ले जाता है, उनकी आयु का घटन हो जाता है। शुक्रदेव गोस्वामी जगह जगह ये भी बताते हैं कि कैसे लोग अपने आयु का व्यय, अपने आयु का क्षय कर लेते हैं। श्रोतक त्यागी राजेन्द्र जन्म तथे सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिना, कि हे राजन, ये संसार में अपश्यताम आत्मतत्वम, इस आत्मतत्व को, इस आध्यात्मिक जीवन के बारे में न जानते हुए लोग क्या करते हैं, तरह तरह के लोगों के बारे में, विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, स्मरण करते हैं। प्रजल के विषय अनेक हैं, अखबार खोल के देखिए, इतने खोली ना ऐसे अंदाज से टेलीविजन भी क्या चलता है, केवल प्रजल, और हजारों लाखों विषय हैं लोगों को चर्चा करने के लिए, लेकिन कैसे विषय हैं, आयु व्यय करने वाले, आयु को समाप्त करने वाले व्यर्थ के विषय, कोई फायदा नहीं इन चीजों से। देखिए, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान ऐसे हर एक विषय का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, अखबारों में देखिए, छोटे छोटे कोई बात के ऊपर 10 लोग अलग अलग दृष्टिकोण से वो विश्लेषण करेंगे। रूपा जी एक बार कहा करते थे कि कभी कभी ऐसे लोग अपना PhD वगैरह करते हैं, कोई एक छोटा जानवर है कहीं जंगल में पाया जाता है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके ऊपर सारा जीवन का विश्लेषण करेंगे, फिर अगले जीवन में क्या बनेंगे, जिसके ऊपर चिंतन किया है वही हम बनेंगे। तो जीवन भर उसी चीज का एनालिसिस, विश्लेषण कर करके चिंतन मन उसी का होता है, भगवान का नहीं होता है। वैसे अनेक अपना जीवन, मनुष्य, मूल्यवान मनुष्य जीवन जो है व्यर्थ गवा रहे हैं, इस चीज का विश्लेषण, उस चीज का विश्लेषण, इसमें वो मत प्रस्तुत किया, उसका खंडन करो, इसने ये कहा है, उसको पराजित करो, बस अपने छोटे छोटे वाद विवाद में तर्क वितर्क में ही लगे हुए हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षत दुःखकृत कारणम्। शंकराचार्य ने कहा है कि हे मूल, तुम्हारे वाद विवाद को, तुम्हारे विश्लेषण आदि को छोड़ो, मृत्यु के समय तुम्हारे कोई काम में नहीं आएंगे, क्या करो, गोविंद का भजन करो, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। फिर अन्य जितने भी चीजें हैं वो तो सब केवल हमारे आयु को खत्म करने वाली है। और फिर आगे बताते हैं, न तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणामृजम्, तो आयु व्यय करने वाले कार्यों को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों को स्वीकार करना चाहिए मुकुंद चरणामृजम की प्राप्ति के लिए, भगवान मुकुंद या श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए। वैसे महाराज ययाति की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। बहुत बड़े राजा थे, सारे पृथ्वी के राजा थे, विश्व सम्राट, और इंद्र तृप्ति के शौकीन थे, और इतना इंद्र तृप्ति करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तो देखिए इंद्र तृप्ति को आगे कितना निर्लज हो जाता, बना देता है कि वो अपने पुत्रों को बुलाकर कहने लगे कि तुम्हारा जो युग अवस्था है मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। तो अन्य पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन उनके एक पुत्र थे जिन्होंने की स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है, और उनको अपना योग अवस्था दे दिया और महाराज यापी का वृद्ध अवस्था स्वीकार कर लिया। इसकी पीछे कहानी बहुत लंबी है, आपने अवश्य पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में। और महाराज यापी बहुत खुश हो गए कि उन्होंने हम युवक हो गए, खूब इंद्र तृप्ति कर ली अनेक वर्षों तक, और अनेक वर्षों तक ऐसा करने के बाद फिर क्या साक्षात्कार हुआ, ये सब व्यर्थ है, क्यों मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इतना एक निर्लज का कार्य मैंने किया कि मेरे पुत्र को मैंने बूढ़ा बना दिया मेरे से पहले, और पुत्र की जो और सब मैंने ले ली केवल भोग करने के लिए, लेकिन अभी भी सुखी नहीं हूं मैं, तो फिर क्या फायदा, फिर से जाकर अपने पुत्र को बुढ़ापा लौटा दिया, और जो अवसर लौटा दिया, अपना बुढ़ापा ले लिया और तपस्या करने के लिए सब कुछ त्याग के चले गए। फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे दराजी की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई और फिर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी हम प्रयास करें और लंबे से लंबे समय तक भी हमें बिना रुकावट के इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त हों, इसके अंत में भी हम इसी निष्कर्ष पहुंचेंगे जो कि महाराज ययाति है। बुद्धिमान व्यक्ति है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है, ऐसा नहीं कि खुद मैं अनुभव करूंगा तब सीखूंगा। महाराज ययाति ने के अनुभव से लाखों साल जिए महाराज ययाति, फिर भी क्या दशा हुई, तो हमें क्यों और अपने इस 60-70-80 साल के छोटे से जीवन में और समय बर्बाद करना है। जो चीज को महाराज ययाति हजारों हजारों साल के आयु से प्राप्त नहीं कर पाए, वो हम क्या हमारे 50-60-70 साल के आयु में प्राप्त कर पाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा वो प्रयास नहीं करे, जैसे प्रहलाद यहाँ कहते हैं यत आयु व्यय परम, चाहे हम बड़े अच्छे कर्मी हो, चाहे हम बड़े ज्ञानी हो, चाहे हम बड़े योगी हो, अंततः घूम फिर के हमें भगवान की भक्ति में ही आना है, अन्यथा जितना भी हमारा कार्य है सब श्रम ही केवलम। धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्व से कथा से नोत्पादे यदि अति श्रम एव ही केवलम। अगर हमारे कार्यों से जो हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों का बड़े अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, अच्छे कर्मी हैं हम, बिल्कुल ठीक ठाक वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है हमसे, परंतु विश्वक से कथा सूर्य न उत्पाद ये यदि रति 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 मतलब आसक्ति, अगर भगवान के कथाओं के प्रति हमारे हृदय में वो आसक्ति और वो आकर्षक उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये सब वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का क्या मतलब। जितने भी विधि विधानों का पालन हमने किया है श्रम एव ही केवलम, केवल व्यर्थ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर एक क्षण अपना मूल्यवान समय जो है अच्छी तरह से भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय परमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। ततो यतेत कुशलः, तो जो कुशल व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मनुष्य देह का उद्देश्य अच्छी तरह से जान लेता है, ततः यतेत, यतेत मतलब उसे प्रयत्न करना चाहिए, किस चीज के लिए, क्षेम आय, जो हमारे वास्तविक भलाई के लिए है। शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम, जब तक ये शरीर का नाश नहीं होता, जब तक ये शरीर बूढ़ा होकर गिर नहीं जाता, बीमार होकर एक्सीडेंट होकर गिर नहीं जाता, जब तक ये शरीर मन इत्यादि साथ दे रहा है, तब तक हमें प्रयत्न करना चाहिए, किस चीज के लिए, क्षेमम, समय गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसको बुढ़ापा आएगा भी नहीं, आएगा या नहीं। बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है, युग अवस्था में मृत्यु हो सकती है। अगर भगवान की कृपा है और हमें लंबी आयु मिलती है तो इस लंबी आयु का उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, अन्यथा ये लंबी आयु एक श्राप है। क्योंकि ऐसे लंबी आयु केवल हम इंद्र सिद्धि के लिए गवाएंगे जिससे कि और जल्दी से नरकगति की प्राप्ति होगी, जिससे कितने अनेक बड़े 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 महान भक्त हुए, संत हुए, सबकी लंबी आयु नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु भी कम साल जिए, ज्यादा समय जिए नहीं, 48 साल जिए। ऐसे कितने भक्त हैं जो लंबे वर्ष नहीं जिए। तो लंबी आयु हो छोटी आयु हो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे, गुण क्या है, क्वालिटी क्या है उस जीवन का, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जब तक शरीर साथ देता है हमें अच्छी तरह से भगवान की सेवा में कार्यरत रहना चाहिए। तो आज कथा यही विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद में प्रहलाद महाराज थोड़ी गणित की बात करने वाले हैं, गणित का उपदेश देंगे और आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे बात बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी रथ यात्रा की सेवा भी करनी है ना। तो कथा बैठे रहेंगे तो फिर अभी रथ यात्रा ठीक से नहीं होगी। ठीक है, और एक दस दस मिनट बैठेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो व्यक्ति अनाज अच्छी तरह से खा लेता है वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है तो वो कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट रहेगा। जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए, उसी प्रकार से आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे भक्तों के लिए कि जो व्यक्ति 16 माला रोज नहीं करता है, जो रोज भगवान की सेवा नहीं करता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से रोगी कहलाता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ कोई भी रोगी नहीं है, यहाँ सब बिल्कुल स्वस्थ है सब। हाँ, शरीर में थोड़े बहुत रोग हो भले कोई बात नहीं, वो तो होना ही है, शरीर के रोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये आत्मा का रोग ये नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज अभी हमारे आयु का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने पहले बताया है कि आयु का व्यय कैसे होता है और आगे इस विषय को बढ़ाएंगे।
पुंसो वर्ष शतम जायु तदर्थम शरीरतात्मनः निष्फलम यदसो रात्र्याम श्वेतिन्द्रम प्रातस्तमः।
कहानी पढ़ लेते हैं सुभाष जी का, छठा श्लोक है ये। प्रभुपाद जी का अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, अज्ञानवश उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे सोने में ही बीत जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। ये सही है। केवल भक्ति में आने के बाद हम सुनते हैं, देखो 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। बाहर की दुनिया में लोग इतना समय मिले सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम वर्णन कर चुके हैं, एक बार हम रेलगाड़ी में जा रहे थे लंबी सफर में, और लंबी सफर थी और एक व्यक्ति हमारे सामने ऊपर सोया हुआ था। जब हम अंदर आए तो वो सोने के लिए चला गया, बल्कि पहले से सोया था मेरे ख्याल से, मेरे से पहले आ गया, वो सोया हुआ था। और जब यात्रा समाप्त हुई तभी तक सोया हुआ था, और बीच में हम थोड़े घबरा गए कि ये आदमी कोई मर तो नहीं गया। के लिए भी नहीं होगा। देखिए क्या कैपेसिटी है आदमी की। कभी कभी हम सोना भी चाहते हैं तो सो नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसे सोया था कि बस पूछिए ना, यहाँ इतना शोर मच रहा था, क्या नहीं लोग आके कोई चाय बेच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ क्या बेचने के लिए आ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े आराम से सोया हुआ था। नींद का आराम ये वास्तव में हराम है, बहुत बड़ा नुकसान है। लगता है बहुत अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, बस विशेष करके ठंडी के समय अभी कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, क्या मंगल आरती में जाना है, जो तकलीफ में जाना, कहाँ आए, जो भक्ति में आए, कितना अच्छा ये जीवन का उद्देश्य है, बस नींद का आराम है। तो नींद सोने से प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह प्रभुपाद जी की का संवाद हो रहा था भक्तों से, वो बोल रहे थे 6 घंटे तक को सोना चाहिए। तो आपने कहा प्रभुपाद जी 6 घंटे केवल, ठीक है 6.5 घंटे, लेकिन प्रभुपाद जी कभी कभी हम इतना परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, ठीक है 7 घंटे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा 7, 7.5 घंटे, 8 इससे ज्यादा कोई सोएगा तो वो कुंभ करना है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म जीवन में गंभीर है तो इसकी परीक्षा क्या है, जल्दी वो उठ रहा है तुम्हें कि नहीं, इससे हम पता। प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति गंभीर है, हम इस बात से पता कर सकते हैं कि वो जल्दी सुबह को उठ रहा है या नहीं। आजकल आधुनिक जीवन शैली ऐसी हो गई है कि जब भक्त लोग उठते हैं तो ये लोग सोने जाते हैं। थोड़े दिन पहले हम लंदन में थे तो वहाँ शहर में पहुंचे तो वहाँ गए थे, तो मंदिर में पहुंचे करीब करीब मंगल आरती के लिए 4:30 बजे। तो वहाँ पास में कोई लोग युवक और युवतियाँ खड़े हुए थे, हमें आश्चर्य हो गया कि 4:30 बजे ये लोग भी उठते हैं। तो हमने भक्तों से पूछे ये लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए, तो बोलने लगे प्रभु जी ये उठे नहीं, अभी सोने जा रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान ने कह ही किया है तो क्या जागर के भूतानी, उन्होंने कहा ही है या निशान में भूतानी, तो उन्होंने कह दिया है कि जो भक्तों के लिए रात है वो उनके लिए दिन है, और प्रत्यक्ष रूप में ये ऐसे भी होता है। तो सुबह को हम जल्दी तब उठ सकते हैं जब हम रात को जल्दी सोएंगे। रात को जल्दी नहीं सोएंगे, रात को हम टीवी देखकर बैठेंगे या कहीं और इधर उधर जाएंगे, तो फिर कैसे सुबह को जल्दी उठ पाएंगे। इसलिए गोकुल धाम ने हमने सोचा ये कटपट चाहिए नहीं, बिजली ही बंद कर दो, क्योंकि जब बिजली होती है ना तो फिर हमेशा ये रहता चलो बिजली है ना, लाइट चल बटन दबाओ बिजली आ गया, जो भी है बटन के दबाने से आ जाता है, क्या क्या चाहिए आपको बटन दबाने से सब मिल जाए। जब बिजली नहीं है तो आदमी थक के तो अभी क्या करें, सो जाए, इसीलिए रात को जल्दी सोना पड़ता है। और वहां आप ऐसे जीवन निभाते कितने खुश हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना, और जितना नींद उतना आवश्यक है उतना ही बस, उससे ज्यादा क्या करना है। सोने प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं 12 घंटे कभी कभी लोग सोते, मैंने पहले सोचा था कि 12 घंटे थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन उस रेलगाड़ी की यात्रा के बाद हमने समझ लिया ये कुछ बढ़ा चढ़ा के शास्त्र में बात नहीं होती है, ये सब अनुभवी है। प्रहलाद महाराज बड़े अनुभव करके कह रहे हैं सब। एक बार विश्वविद्यालय में गए थे, बागलकोट में कोई कॉलेज था, तो हम लड़कों को पूछ रहे थे कि आप कितने बजे उठते हैं, एक कहा कि लेट उठते हैं, लेट मतलब कितना, 6 बजे 7 बजे, नहीं 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 वो थोड़ा शर्मा रहा था बोलने, 9 बजे उठते हो। तो फिर बात दूसरा लड़का था, کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ میں 10 بجے اٹھتا ہوں. تیسرا کہ میں 12 بجے اٹھتا ہوں. سارا سوچا ہرے بھگوان یہ کیا ہے. تو ایسے جیون میں الٹ پلٹ ہو گیا ہے سب جگہ, کوئی ٹھکانا نہیں, کبھی کیا سلیم نہیں, کچھ نیم نہیں, کچھ وویک نہیں. جو من میں آیا وہ کرو, کب چاہے وہ کھاؤ, کب چاہے سو, کب چاہے کچھ ہی کرو. کوئی نیم نہیں, کوئی بندھن نہیں, کچھ نہیں. پشوؤں کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. واسطے میں پشوؤں کے جیون میں زیادہ بندھن ہوتے, وہ نیم کا پالن کرتے ہیں. لیکن منشی ہی ایک ایسی بھومی ہے جس میں کوئی نیم نہیں, کچھ نہیں, جیسے من میں آئے کرو. اور اسے پرتنتا کہتے ہیں, اسے پرگتی کہتے ہیں. اور کوئی بندھن ڈالنے جاتے ہیں انسان تو لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ کیا کٹروادی ہیں, فینیٹکس ہیں. ایک بار ہمارے بمبئی جو مندر میں کئی لوگ آتے ہیں, اور کبھی کبھی جوڑے بھی آتے ہیں, پروش سے ہی آتے ہیں. کبھی کبھی صحیح وسط پہن کے نہیں آتے. کبھی کبھی ایسے ساتھ میں بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, جو کہ مندر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پریسیڈنٹ ہے درجے ہری بھائی, تو ہم نے ان سے نویدن کیا تھا, پربھو جی آپ کچھ کیجیے, ان کو نیم بنائیے کہ ایسے کوئی بیٹھ کے, جیسے گارڈن میں بیٹھتے ویسے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, پلیز آپ ذرا بولیے. تو انہوں نے سر ڈاکٹروں کو بتایا, جو چوکی دار ان کو بھی بتایا. تو ایک بار ایسے چوکی دار ان کے کسی کو روکا, تو وہ لوگ جھگڑا کر کے آگے بیٹھے ہری بھائی کے پاس, اتنے زور زور سے چلانے لگے کہ آپ لوگ القاعدہ ہیں, آپ لوگ یہ ہے وہ ہے. تو کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے ایک اسبھی ڈھنگ سے بیٹھنے کے لیے ساتھ منع کیا. کس کے لیے؟ یہ آج کل کی سنسکرتی ہے, بھارت کے اندر نہیں. مندر میں بھی آتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھنا کیسے چاہیے, کیسے گھومنا چاہیے. مندر میں تو کوئی کم سے کم سبھیتا ہونی چاہیے, نہیں مانتا. تو پھر آج کل جو مندر میں نہیں آتے ہیں ان کی بات دور ہے, جو مندر میں وشواس ہی نہیں کرتے تو وہ کیا نیم پالن کریں گے؟ پرہلاد مہاراج کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اگر 100 ورش کی آیو ہے, 500 ورش ستم کی آیو ہو, سب شتم مطلب 100. آج کل 100 ورش کی آیو بھی نہیں ہوتی ہے, پربھو جی بتا رہے ہیں. ہاں, جو واسطو میں گرو بھاگیشالی ہے وہ 100 ورش تک پہنچ جاتے ہیں. جو بھاگیشالی ہے جلدی ختم کرتے ہیں یہاں سے, ادھر کون بڑھاپا میں دیکھ بھال کرے گا, کتنے کشٹ بڑھتے جا رہے ہیں. تو 100 ورش کی آیو میں تد اردھم مطلب اس کا آدھا اجیت آتمنا ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اندریوں کو جیت نہیں لیا ہے. جیتاتمنا ہے یا جیتندری نہیں, اجیتندری ہے, اجیتاتمنا ہے, جس نے اپنے اندریوں کے اوپر قابو نہیں کیا ہے. ایسے لوگوں کی بات یہاں کر رہے ہیں پرہلاد مہاراج. 500 ورش شتم یاگو تد اردھم چجیت آتمنا ہے, نشلم یت اصو راتریاں شیتےندھم پراپت سمہ. تو ایسے ویکتی اپنا آدھا سمے جو ہے رات میں گوا دیتے ہیں 12 گھنٹے سونے میں, اور اس پرکار سے ان کا جیون 50 سال کا ہو جاتا ہے. کیونکہ 50 سال تو سونے میں بتا دیے, اب رہے 50 سال. تو 100 ورش کی آیو والا ویکتی واسطو میں 50 سال جیتا ہے. اور یہ جو اندھکار ہے, یہ نیند ہے, یہ تمو گن کا کارج ہے. تمو گن میں ابھیان ہے. راجا سو رہا ہو یا کوئی پشو سو رہا ہو, نیند سب کو ایک بنا دیتا ہے, ہے کہ نہیں؟ نیند میں کون راجا اور کون پشو؟ راجا کو پتا نہیں ہوتا نیند میں کہ میں راجا ہوں, اور نہیں کتے کو پتا ہوتا ہے نیند میں کہ وہ کتا ہے. سب ابھیان میں ہوتے ہیں. نیند, مرتیو, یہ سب ایک ہی سمان ہے. مرتیو بھی ایک طرح کی نیند ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم کئی مہینوں تک سوئے رہتے ہیں, اور اگر نیچ یونی پراپت ہوئی تو ان نیچ یونیوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. تو پرہلاد مہاراج یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کی آیو ایسے ویسٹ ہو جاتی ہے کیول سونے میں. پربھوپاد جی स्पष्टीकरण करते हैं तात्पर्य में कि वर्ष शतम इससे हमें जान लेना चाहिए कि 100 वर्ष अपने अपने लोक के अनुसार, ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं लेकिन उनके 100 वर्ष, हम 100 वर्ष जीते हैं लेकिन हमारे पृथ्वी लोक के 100 वर्ष, उस प्रकार की जो कीड़ा होता है वो भी 100 वर्ष जीता है लेकिन उसके 100 वर्ष, उसके 100 वर्ष जो होते हैं वो हमारे लिए भले 2-4 मिनट भी क्यों ना हो, और हमारे 100 वर्ष ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण भी नहीं है, परंतु हरेक योनि के हरेक स्थान के तुलना से ये 100 वर्ष कहे गए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं, और आगे कैसे बीत जाता है आइए सुनते हैं। मुग्धस्य बालिकाय शौरे क्रीडतो याति दंशति जग्रयाग्रस्य देहस्य याति कल्पस्य दंशति। मुग्धस्य बाल्ये, बाल्ये मतलब बाल्यावस्था है, कैसा रहता है बच्चा? मुग्ध। मुग्ध का क्या मतलब है? भ्रमित। बच्चे को पता नहीं चलता ना कि क्या हो रहा है, ये क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, घर क्या है, माँ कौन है, पिता कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं होता है। तो बाल्यावस्था में ऐसे समय बीत जाता है भ्रमित होते हुए। किशोर क्रीड़ा हो जाती, किशोर अवस्था में या जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कैसे समय बीतता है? क्रीड़ा करने में बीत जाता है। विंशति ही मतलब 20 साल। तो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को मिलाकर 20 साल ऐसे बीत जाते हैं, मतलब 10 साल बाल्यावस्था में, 10 साल किशोर अवस्था में ऐसे बीत जाते हैं। जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति। और ग्रस्त देह से जरया, जरा की अवस्था में, मतलब बुढ़ापे की अवस्था में क्या होता है? ग्रस्त देह से जो बुढ़ापे से ग्रस्त व्यक्ति है, अकल्पस्य, उसके अंदर कोई दृढ़ता नहीं होती है कोई भी कार्य करने के लिए, बहुत कमजोर हो जाता है और अपने भी निजी कार्य संपन्न करने में असमर्थ हो जाता है। और ऐसे विंशति ही ऐसे उसके 20 साल बीत जाते हैं। तो अभी इस श्लोक में कितने वर्षों की बात की है प्रहलाद महाराज ने? 40 वर्ष। लेकिन इस 40 वर्ष में आदमी सोता भी है ना, तो इसका आधा काट दीजिए, 20 साल। तो पहले प्रहलाद महाराज ने कहा हुआ था कि 50 साल सोने में बीत जाते हैं 100 वर्ष की आयु में, अभी यहाँ 40 वर्ष का आयु का वर्णन किया है, लेकिन इस 40 वर्ष में 50 साल पहले गिने गए हैं तो उसको आधा करना चाहिए, 20 वर्ष हो जाते हैं। तो 50 साल सोने में और ये 20 साल जो ऐसे देर से जाते हैं तो 70 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 साल की आयु में 70 वर्ष ऐसे खत्म हो गए बिना कोई लाभ के। वापस आगे दुरापूर्ण कामेन मोहेन च बलीयतां शीर्षं गृहेषु सप्तस्य यही। और फिर बाकी जो समय होता है शेषम, बाकी जो 30 साल रह जाते हैं जिसमें व्यक्ति थोड़ा बहुत हृष्ट पुष्ट रह जाता है, उसमें क्या होता है? गृहेशु सत्य, अपने गृह से इतना आसक्त हो जाता है कि क्या होता है? प्रमत्तस्य, प्रमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है उस आसक्ति में। हिरण्यकश्यप भी इतना बड़ा असुर था, इतना क्रूर था, लेकिन जब अपने बेटे प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाया, क्या कर रहा था? रो रहा था, प्रेम के आंसू बह रहे थे, मेरा बेटा, है ना। तो इतना क्रूर व्यक्ति, इतना बड़ा नास्तिक व्यक्ति, जिसने सारे ब्रह्मांड में इतना अत्याचार और अन्याय किया था, सबको हैरान किया था, कोई कृपा की भावना नहीं, ऐसे व्यक्ति अपने पुत्र के बारे में इतना स्नेह देखिए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हिरण्यकश्यप के आंखों से आंसू बह रहे थे स्नेह के आंसू। तो ये है संसार में पारिवारिक प्रकृति, हृदय ग्रंथि, हृदय में गांठ बांध देती है। और अल्लाह कहते हैं व्यक्ति प्रमत्त हो जाता है, मत्त उन्मत्त प्रमत्त है। ये ऐसे आसक्ति के नशे में व्यक्ति सत्य को नहीं देख सकता है। देहा पत्य कलत्रा विषु आत्म संयेशु सत्स्वती, ये जो हमें घेर के रखे हैं सब सैनिक सैन्येशु, ये कैसे हैं? असत्य हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास ये सब हैं, देह अपत्य कलत्र आदिशु, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, रिश्तेदार है, मेरा शरीर है, ये सब मेरे सैनिक हैं और ये मेरी रक्षा करेंगे दुख के समय। परंतु क्या होता है? असत सुख अपी, ये सच्चे सैनिक नहीं है, दिखावे के सैनिक हैं, ये हमको सही समय पर मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पश्चन नपिन पश्यति, कि उसका निधन होने जा रहा है लेकिन देखते हुए भी व्यक्ति नहीं देखता है। ये है प्रमत्त होने का परिणाम। तो प्रहलाद यहाँ कह रहे हैं मोहिन दुरापूर्ण कामेन, तो काम वासना इन 30 वर्षों में इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति इनको पूर्ण करने में ही लगा रहता है मोहिन, और ऐसे मोह में पड़ जाता है बलियता, और ये जो काम वासना है बहुत बलवान होता है और उसको पूरी तरह से मोहग्रस्त बना देता है, और वो आदमी प्रमत्त हो जाता है और अपयापी बाकी जो 30 वर्ष है ऐसे व्यर्थ चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं 100 के 100 वर्ष जो है पूरे खत्म हो गए। तो सारा अकाउंट दे दिया है प्रहलाद महाराज ने 100 वर्षों का, कि आदमी अपने 100 वर्ष कैसे बिताता है, सारी डायरी बना दी है प्रहलाद महाराज कि संसार में लोग अपने मूल्यवान मनुष्य देह को कैसे बर्बाद करते हैं। तो ये गणित कृपया याद रखिएगा। और अभी हम लोग 100 वर्ष तो जीते नहीं है, 70 वर्ष की आयु एवरेज होगी, तो 70 वर्ष में भी देखेगी तो हमारे कितने वर्ष ऐसे चले जाते हैं। इसलिए हमें प्रहलाद महाराज के उपदेशों से बहुत गंभीरता से इनको स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही विचारणीय उपदेश प्रहलाद महाराज के हैं, और ये उपदेश आपके रिश्तेदारों को मित्रों को भी आप सुनाइए भागवत लेकर, कि देखो ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, और उनको बताइए कि आप कहते हैं कि ये मेरी आयु नहीं है भक्ति करने की, लेकिन देखो प्रहलाद महाराज 5 साल के होकर ऐसी बातें कर रहा है। तो वास्तव में हमारा अहो सौभाग्य है कि हमें इस भक्ति पथ में आने का अवसर मिला है, नहीं तो बाहर देखिए लोगों की क्या हालत है। भजन है कभी और गाएंगे, जो भी गोल ना हुई तो तौबे की हुई तो, इसमें भक्त वर्णन करते हैं अगर महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता। तो हम लोग आजकल के जमाने में ये भी कह सकते हैं यदि रूपा न हुई तो कुछ, हम भी ऐसे ही होते हैं ना, 100 वर्ष ऐसे हम लोग भी बिताते हैं, हमारा भी यही हाल होता। तो हमें आभारी होना चाहिए रूपा जी का, आभारी होने का केवल अपने जबान से नहीं अपने कार्यों से। हमें भक्ति के पथ को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, नियमों को बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, बहुत ही सिंसियर होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कल हम एक जगह गए थे और वहां कोई स्वयं सेवक थे जो कोई समाज के कार्य के लिए कार्य करना चाहते थे, हम उनको बता रहे थे कि कोई भी कल्याण का कार्य करने जा रहा है तो उसके लिए कई वस्तुएं हैं, कई चीजें हैं जो बाधक हो सकती है। पहला है स्वार्थ। जो व्यक्ति स्वार्थी होगा तो कभी दूसरों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकेगा। दूसरी बात अहंकार, जब अहंकार बीच में आ जाएगा तब भी कल्याण का कार्य दूसरों के लिए नहीं कर पाएगा। स्वार्थ की वजह से वो आदमी सोचेगा कि दूसरों के लिए क्यों करूं, मैं मेरे लिए ही करूं। और जब अहंकार आ जाएगा तो आदमी सोचेगा मैं दूसरों के लिए इतना कल्याण कर रहा हूं और मुझे को नमस्कार भी नहीं कर रहा है। फिर हम सम्मान की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा अपेक्षा करते हैं। इन सब चीजों से सब कुछ नष्ट हो जाता है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें हैं जो हमारे परोपकारी आंदोलन में बाधक वस्तु बन जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और भक्तों के बीच में भी रहते हुए हमें ऐसे ही प्रेम और मैत्री का संबंध बनाए रखना चाहिए। हमें ऐसे कभी भी कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरे के भक्ति में प्रगति में हम रुकावट डालें, बल्कि अन्यों को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जब भगवान प्रचेताओं के सामने प्रकट हुए, ऋषिमद् भागवत में कथा आती है, तो भगवान ने कहा कि मैं आपके परस्पर मित्रता के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपको कृपा दे रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से आपस में रह रहे हो और मेरा भजन कर रहे हो। आपके तपस्या के समय एक दूसरे से आप झगड़े नहीं, एक दूसरे के नीचे उतारने की कोशिश नहीं की आपने, आपने एक दूसरे की मदद की, बड़ी अच्छी मैत्री की भावना आपने रखी। तो देखिए, भगवान की कृपा, रूपा जी की कृपा, वैष्णव की कृपा आनी चाहिए तो हमें सब एकजुट कर बड़े प्रेम से, सहयोग की भावना से रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण मूल्यवान है, हम बार बार सुन रहे हैं, और अगर केवल झगड़ों में, मतभेद में, उसमें उसमें हमारा मूल्यवान समय क्षीण हो जाए तो कितना दुर्भाग्य है। इसलिए राधा गोकुलाना भी यहाँ पर विराजमान है हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। कई भक्त कह रहे हैं कई काफी समय से कि बड़े विग्रह कब आएंगे, कोई जल्दी नहीं है। जब तक हम सब पूरी तरह से तैयार नहीं होते तो बड़े विग्रह आए और उनको अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाए तो क्या। जब तक हमारे भक्तों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती, जब तक उतने परिपक्व हमारे भक्त नहीं होते, ये हमारे लिए छोटे राधे राधे बंधु गोकुलानंद बहुत बढ़िया है, बहुत हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं ना। कोई अंतर नहीं है छोटे राधा गोकुलानंद में और बड़े राधा गोकुलानंद। हाँ, आएंगे कभी, जब उनकी इच्छा होगी वो बड़े स्वरूप में भी आएंगे अवश्य, लेकिन उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हमने भक्ति पुरुषों पर नारायण के सामने ऊपर आसन बैठ के बोलने का साहस किया, हमारी दोस्ता है। हम आशा करते हैं कि पुरुषों पर महाराज के दो शब्द कहे। अभी आने वाले दो दिनों में तो भागवत क्लास उनके सुनने ही वाले हैं जगन्नाथ लीला, फिर भी अगर आप कुछ टीका करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए।
हरिद्वार
भूल ढूंढिए, प्रश्न मत कीजिए।
आया दस दिन प्रहलाद महाराज से श्री सत्य से दस टाइम लाइफ से वन लाख ख्वाहिश है
महाराज जी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के जी रहे थे सत्ययुग में, और वहां पर जीवन की उस समय तो जीवन की अवधि 100,000 वर्ष की थी। फिर प्रहलाद महाराज वर्ष शतम क्यों कह रहे हैं, 100 वर्ष की बात क्यों कह रहे हैं, इसके लिए दो उत्तर हो सकते हैं। एक कि हालांकि ये प्रहलाद महाराज और अपने मित्रों की बातें वो शत्रु की बातें हैं, लेकिन कह रहे हैं अब सुखदेव गोस्वामी, या तो फिर सुखदेव गोस्वामी इस द्वापर के अंत में इस बात को कह रहे हैं, तो कलयुग के लोगों के लिए कथा दे रहे हैं। इसलिए कलयुग के लोगों में यहाँ 100 वर्ष आयु होती है, इसलिए वो हमारे लिए कह रहे हैं। ये एक उत्तर हो सकता है। दूसरा है कि जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि 100 वर्ष एक रिलेटिव चीज है, मतलब तुलनात्मक चीज है। उस समय भी उनकी आयु 100 वर्ष, लेकिन हमारे अब की तुलना से 1,00,000 वर्ष। उनकी पूरे जीवन की अवधि 100 वर्ष, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। पूरा जितना भी जीवन की अवधि होती है वो 100, क्योंकि बाल्यावस्था भी उतना ही ज्यादा होगा लंबा, फिर जो अवस्था और उतना लंबा, तो प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो वो भी 100 वर्ष कह सकते हैं। ये मेरे विचार में और कोई माइक
परिस्थिति से संतुष्ट होना चाहिए और भक्ति में रहना चाहिए, ये तो बात ठीक है। पर जैसे आगे यदि भक्ति में आदमी रहे तो फिर काम या देश का विकास के वास्ते वो भी तो जरूरी है।
ये सबसे बड़ी समस्या है कि सभी लोग देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। अगर अन्यों का कल्याण होना है तो सर्वप्रथम हमारा कल्याण होना चाहिए। हम दूसरों का कल्याण करेंगे कैसे? एक डूबता हुआ आदमी है, दूसरे आदमी को डूबते हुए कैसे बचाएगा? वो बेचारा उसको भी जल्दी से डुबा देगा। तो अगर हमें परोपकारी कोई कार्य करना है तो सर्वप्रथम अपना जीवन सार्थक करना है। महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि से जन्म हो जा, जन्म सार्थक को ही करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो फिर परोपकार करो। दोनों सार्थक तो चलती हैं और दोनों में संबंध भी है। परोपकार करने से भी अपना भी जीवन सार्थक हो जाता है। परंतु मूल बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ परोपकारी कार्य कृष्ण भक्ति है। अनेक सर्व कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम पक्ष भक्ति का है, जो हमेशा के लिए सारे समस्या को खत्म कर देगा। केवल अगर हम भौतिक स्तर पर कल्याणकारी कार्य करने के लिए चेष्टा करेंगे अवश्य लाभ तो होगा थोड़ा बहुत, परंतु ज्यादा समय नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सबसे अधिक जोर भक्ति के ऊपर दे और फिर समाज में सुधार करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों में लोभ, ये घमंड और ये सब चीजें, काम, ये सब कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगी तो कल्याणकारी कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखिए राजनीति के क्षेत्र में क्या चल रहा है, सब समाज के कल्याण के लिए बैठे ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ समय है उनको कल्याण करने के लिए? दूसरों का एक दूसरे के काम सीखते रहते हैं तो कहाँ वो करेंगे कल्याण, क्योंकि एक दूसरे के हृदय में इतना काम है, इतना अहंकार है, स्वार्थ है, कैसे करेंगे? तो अगर समाज का कल्याण करना है तो पहले हृदय को शुद्ध करना होगा। एक राजनीति के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महिला है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य करती है। तो वो हमारे स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट से मिली थी तो बातचीत होने लगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है आप लोग भक्ति वगैरह कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण के लिए आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, हम पर्यावरण को सुधारने के लिए मूल उपाय हम स्वीकार कर रहे हैं, हृदय के पर्यावरण को हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का पर्यावरण को नष्ट लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हृदय प्रदूषित है, लोग, काम, ये वो सब चीजें भरी पड़ी है, इसलिए आदमी आज दिन पर्यावरण को नष्ट करे किए जा रहा है। लेकिन हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, तो फिर केवल भगवत प्रेम नहीं, भगवान को प्रेम करने का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से सभी प्राणियों को प्रेम करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, तब पर्यावरण की स्वाभाविक रूप से वो देखभाल करेगा। ये आजकल की आधुनिक बात है, पर्यावरण पहले ऐसे कोई बात नहीं करता था, ये तो नेचुरल था, स्वाभाविक था सबके जीवन में कि हम किसी नदी में जाकर उसको प्रदूषित नहीं करें, हवा को प्रदूषित नहीं करें, भूमि को प्रदूषित नहीं करें, ये तो नेचुरल था, स्वाभाविक था पहले। आज ये बड़ा विषय बन गया है क्योंकि भगवान ने बतलाए हुए पद से हम इतने दूर हट गए हैं। तो अगर हम लोगों को भक्त बनाए, उसके बाद भी अगर कोई आर्थिक समस्याएं रहेंगी तो उनका निवारण भी आसानी से हो पाए, लेकिन लोगों को भक्त बनाए बिना, उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कराए बिना अगर हम परोपकारी कार्य करने जाएंगे बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के जमाने में वो कार्य नहीं करने चाहिए, परंतु मूल ही कृष्ण भक्ति का प्रचार होना ही चाहिए। और एक अंतिम प्रश्न किसी का है,
आप एक भजन के बच्चे में बोल रहे थे अगर महापुरुष न होते तो हमारी जिंदगी क्या होती, जिसे आपने बोला कि अगर प्रभुपाद न होते तो हम आज हमारा जीवन क्या होता, और हम बजाओं के पास सोचे नहीं थे
ये प्रश्न यहाँ पे है कि अच्छा ये प्रश्न अंग्रेजी में लिखा है, ये प्रश्न ये है कि चाहते हुए भी हम इंद्रियों को विषय से दूर नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिकली कैसे इंद्र तृप्ति से हम दूर रहे। इंद्रियां जो है उनको कोई ना कोई कार्य चाहिए। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, देखा होगा वो बंदर है, तीन एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रियों को कोई एंगेजमेंट चाहिए, कोई कार्य चाहिए। तो इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो जो संसार को भोग करने की इच्छा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सर्वोपाधि मुक्तम तब पर निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो भक्ति का मतलब ये है कि हमारे इंद्रियों को हम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, जिससे कि हमारा हृदय और हमारा मन, हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगे और हम उपाधि रहित हो जाएंगे। अभी तरह तरह की उपाधियां हैं जो देह बुद्धि से उत्पन्न होती हैं, हमें उनसे मुक्त होना है। तब इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा भौतिक क्षेत्र में न रखे हम कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखेंगे और इसे भक्ति कहते हैं। और भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास, इससे हमें बहुत आनंद मिलेगा, सच्चा आनंद ही हमें भी मिलेगा। ठीक है, तो पता नहीं समाप्त करते हैं, और कल और परसों सुबह अवश्य आइएगा। जगन्नाथ लीला का वर्णन करने वाले हैं, हमें जगन्नाथ लीला ज्यादा सुनने में नहीं आता है यहाँ पर, तो बहुत मधुर कथा आप कल अवश्य सुनने आइएगा। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।